لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأحلق أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آج کی رات 1439 ہجرہ کے ایام عزا کی پہلی رات ہے، اور اتفاق سے کوئنسیڈنٹ پروردگار کی مصلحت کے شب جمعہ بھی. ایوری شب جمعہ ہمارے لیے ایک وارننگ آتی ہے اسلام کی جانب سے، اور ہر سال ایام عزا دوبارہ ایک خطرے سے ہمیں آگاہ کرتا ہے. دوبارہ پھر ایک ہر سال دوبارہ یہ وارننگ آ جاتی ہے، ایوری شب جمعہ اور ہر سال محرم کی یہ پہلی رات. اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک مومن کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز، the most expensive، وہ اس کا ایمان ہے. ٹھیک ہے، مال کی ایک اہمیت ہوگی، عزت کی ایک حیثیت ہے، انسان کی جان کی ایک ویلیو ہے، اولاد کی اپنی جگہ ایک بہت اہم حیثیت ہے، مگر ان سب سے زیادہ اہم چیز ہے ایمان. چنانچہ اگر ایمان کو خطرہ ہو تو آدمی اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے یا کر دینا چاہیے. یہی آج کی مجلس میں آگے چل کے ڈیٹیل آئے گی کہ قربان کر دینا چاہیے. اب یہ دوسری بات ہے کہ آج کے اس دور میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال مومن کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی کہ اپنے ایمان کو بچائے. مال چاہیے تو مال قربان کر دے، عزت چاہیے تو عزت قربان کر دے، جان چاہیے تو جان قربان کر دے، اولاد چاہیے تو اولاد قربان کر دے، مگر ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دے. اچھا، اب یہ تو بہت ایک عام سی بات ہے، ایوری شب جمعہ دو مختلف ایسپیکٹ یا اینگل سے ہم کو یہ یاد دلایا جا رہا ایوری شب جمعہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا، ایمان کا پروٹیکشن، یہ سب سے اہم چیز. اچھا، یہ ایوری شب جمعہ تو میں نے اس لیے کہا کہ شب جمعہ ذرا دعائیں ہمارے یہاں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، ورنہ تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے ڈیلی سے، اور ڈیلی بھی اس انداز سے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آج جو آیت میں نے پہلی مرتبہ تلاوت کی، دو آیتیں آج تلاوت کی، تو جو پہلی آیت تلاوت کی اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا؟ یہ بھی یہی کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ ڈیلی. اب وہ نمازوں میں کتنی بار آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر فاتحہ کے حوالے سے کتنی بار پڑھتے ہیں، اور مرنے والے کی ایصال ثواب، وہ سارا کیلکولیشن کا نہ ٹائم ہے نہ ضرورت، مگر یہ خود ایک قسم کا الارم ہے، ایک قسم کی وارننگ ہے کہ ہر وقت مومن کے صراط مستقیم سے ہٹ جانے اور ڈائیورٹ ہونے کا چانس ہے، یہ ڈیلی. اس کے بعد ایوری شب جمعہ دعائے عدیلہ، جن میں سے دعائے عدیلہ ایک تو نہیں ہے، بہت ساری، ان میں سے ایک دعائے عدیلہ آج میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. جب مولا نے آخری زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ سبجیکٹ یا ٹاپک بن گیا آج کل، لیکن بہرحال آج کی مجلس میں یہ ساری باتیں نہیں آئیں گی. جب مولا نے آخری زمانے کے حالات بتائے کہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ سب سے زیادہ جو اس وقت خطرناک بات ہے کہ مومن، ہمارا ماننے والا، ہمارا شیعہ، وہ اپنے ایمان کو کھو دے گا، تو کسی نے تڑپ کے کہا مولا تو اس زمانے میں اپنے ایمان کے پروٹیکشن کا طریقہ کیا ہے. امام علی نے اس کا ایک بہت لیندی پروسیس بتایا، لیکن اسٹارٹ یہاں سے لیا کہ یہ دعا صبح و شام پڑھتے رہنا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور اس میں یاد رکھیے گا کہ عمل سے زیادہ، فروع دین سے زیادہ، ایکشن سے زیادہ عقیدے کی بات. ثبت قلبی، دل 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 کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، نماز اور روزے واجبات و حرام سے نہیں ہوتا. بہرحال باتیں بعد میں ہوں گی، لیکن ثبت قلبی علی دینک کی دعا یہ بتا رہی کہ آخری زمانے میں عقیدے کو خطرہ ہوگا. اب نماز، بے نمازی ہر دور میں گزرے ہیں، بے حجاب عورتیں ہر دور میں رہی ہیں، ڈسکو اور ڈانس کے شوقین نوجوان ہر دور میں رہے ہیں، حرام کھانے والے بزنس مین ہر دور میں رہے ہیں. آخری زمانے کا مین پرابلم ہے ثبت قلبی، دل بھی آدمی کا اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا. اور انفارچونیٹلی ایمان کے پروٹیکشن کا جو سیزن ہے، جو سب سے اچھا موقع ہے، جو سب سے اچھی ڈیٹس ہیں، وہی آج کل ایمان کو لوز کرنے کی اور ایمان کو کھونے کی ڈیٹس بن گئی. یا ایام عزا، یہ وہ موقع ہے کہ جب مومن کا ایمان ایک طرح سے ریفریش ہو جاتا. ہر دفعہ ایام عزا آتے ہیں، مومن کو ایک نئے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. لیکن آج کل تو جتنی گمراہی کی باتیں ہیں، جتنی مس گائیڈ کرنے والی باتیں ہیں، جتنا کنفیوژن کریٹ کرنے والی باتیں ہیں، جتنا عقیدے کے اگینسٹ باتیں ہیں، وہ ایام عزا ہی میں ہوتی. آج تو یہ پہلی رات ہے اور دنیا بھر میں آج یہ پہلی مجلس ہے، لیکن اگر آپ لاسٹ 2-3-4 ایئرز سے دیکھیں تو یہ ایام عزا کے دو مہینے ایسے ایسے ایشوز ہماری کمیونٹی کے اندر پلانٹ کیے جاتے ہیں، ایسے ایسے فتنے ہماری قوم کے درمیان پیدا کیے جاتے ہیں. گرچہ آگے ایک مجلس بہت ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی، لیکن جلدی جلدی یہ فیس بک اور یہ انسٹاگرام اور یہ ٹویٹر اور یہ واٹس اپ، ہر سال دو مہینے تو اس میں گزر جاتے ہیں. خیر، میں نے کہا کہ یہ جملہ میں تھوڑی دیر بعد کمپلیٹ کروں گا، لیکن ایوری شب جمعہ ایمان کو بچانا، اور خاص طور پر یہاں مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جس کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے. کہ عمل میں خرابی ہر دور میں رہی ہے، لیکن الحمدللہ ہر دور میں شیعہ کا عقیدہ ہمیشہ سولڈ رہا. آخری زمانے میں عقیدے کے مسئلے پیش آئیں گے، جس پر کچھ گفتگو میں بعد میں کروں گا. تو اب ایوری شب جمعہ ہمیں ایک طرف اگر وہ میسج دیتی کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا، پورے ویک میں روزانہ امام کو یاد رکھنا ہے، لیکن پورے ویک میں سب سے زیادہ اگر یاد کرنا ہے تو شب جمعہ، اور شب جمعہ جب ختم ہوتی ہے تو دعائے ندبہ کی شکل میں امام کو یاد کرنے کا جو اسلام نے کورس بنایا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا. بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، دعائے سماعت جو جمعے کی آفٹرنون کو پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی تعلق زمانے کے امام سے، کیونکہ جس دن امام ظاہر ہوں گے اس دن एक आवाज सुबह के वक्त आएगी, एक आवाज शाम के वक्त। सुबह की आवाज जिब्राइल की होगी जो कॉल करेगी मक्का के लिए, और शाम की आवाज शैतान की होगी। आजकल चूंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा मिंबर पे बयान हो रहे हैं तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो खैर, दुआए समाज भी अगर जमाने के इमाम से रिलेटेड दुआ तो फिर तो पूरी शबे जुमा और जुमे का दिन पूरा साल। एक तो ये जमाने के इमाम का आना, चुनाचे एक और बहुत अहम हदीस है कि मासूम ने फरमाया कि अगर तुम दुआएं करते करते थक जाओ और जमाने का इमाम ना आए तो समझ लेना कि इसमें भी तुम्हारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि इमाम का आना पता नहीं कितने मोमिनीन को काफिर बना के उनकी गर्दन पे इमाम की तलवार चलाएगा। हमारे यहां तो खाली उलमा का जब मजाक उड़ाया जाता है तो यह कह दिया जाता है कि इमाम आके इनकी गर्दनें काटेंगे, मगर मोमिनीन कराम। अब ये बहुत आजकल बहुत कॉमन बातें हो गई हैं तो मैं आपका टाइम इसमें ज्यादा कंज्यूम नहीं करता। एवरी शबे जुमा जमाने के इमाम को याद करना है, वो एक अलग ड्यूटी, मगर इमाम को जब याद करोगे तो फिर ये भी देखना कि क्या तुमने अपने ईमान को प्रोटेक्ट करने के तरीके इख्तियार कर लिए, क्योंकि जमाने का इमाम का आना बहुत से मोमिनीन का ईमान खत्म होगा, लेकिन शबे जुमा खाली जमाने के इमाम को याद नहीं करना है, मौत को भी याद करना। हमारे यहां जब जमाने के इमाम को इतना याद नहीं किया जाता था, आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले, तब भी शबे जुमा मौत को तो हमेशा याद किया जाता। क्यों? आखिर सूरह यासीन की तिलावत आज के आमाल में बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है मरने वालों के लिए। क्यों आज इंसान मरहूमीन को याद करके फातिहा पढ़ता? क्यों आज लोग अपने वालिदैन की मगफिरत की दो रकअत नमाज पढ़ते? और यह सिलसिला कब से जारी, जब इमाम जमाना का जिक्र भी हमारे यहां न मिंबरों पे होता था न आपस के डिस्कशन में, तब भी मौत। तो शबे जुमा का मौत को याद करने का मैसेज यह हर एक को पता है, लेकिन मौत के हवाले से भी यही मैसेज तो है कि जब मलकुल मौत आएगा तो कितने ऐसे मोमिन होंगे जो सारी जिंदगी अपने ईमान को बचा के ले आए और लास्ट एंड फाइनल स्टेज में अपना ईमान खो देंगे। तो अब हर शबे जुमा, क्योंकि ये बातें मिंबर पे बहुत बयान होती हैं, इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं, तो एवरी शबे जुमा तो आप देखिए डेली इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ईमान को प्रोटेक्शन के लिए एक वार्निंग, फिर वीकली दुआए अदीला मौत के लिए पढ़ी जाती है, मौत के लिए भी पढ़ी जाती है, और इमाम जमाना तो वीकली, और फिर आइए हर साल एयरली अय्याम आजा। अय्याम आजा शुरू हो गए और बहुत ही क्लियर मैसेज मिला कि कितने लोगों ने आका हुसैन के करबला के उस जिहाद के मौके पे अपना ईमान खो दिया। क्या मुसलमानों का टोटल नंबर 72 या 100 या 150 मैक्सिमम? इमाम हुसैन की आर्मी की तादाद कितनी? मैक्सिमम 200। अच्छा, अब ये बात मुझे आगे चलकर एक मजलिस में डिटेल के साथ पढ़ना है, लेकिन इन शॉर्ट आज भी ये बता दूं, और वो ये कि वाजिबात और हराम का सिस्टम शरीयत, वो उसके लिए इंतहाई ऑथेंटिक हदीस चाहिए होती है। बल्कि मरहूम आगा खोई आयतुल्लाह सिस्तानी ये तो फरमाते हैं कि मुस्तहबात यानी सुन्नत और मकरूहात इसके लिए भी इंतहाई ऑथेंटिक हदीस होनी चाहिए। खाली वाजिबात और हराम के लिए नहीं, ये जो आप मफातिहुल जिना या गुजराती का मजमुआ या आमाल की कोई किताब उठाते हैं और उसके अंदर हर अहम मौके पे लिखा होता कि आज की रात गुस्ल करो, तो क्या आप अगर आगाए सिस्तानी की तकलीद में हैं या आगाए खुई की तकलीद पर बाकी हैं, तो क्या आप आमाल की किताब में ये देख कर के आज की रात गुस्ल करो मुस्तहब की नियत से गुस्ल कर सकते हैं? जी नहीं। हमारे यहां तो इस मसले पर कोई आदमी गौर भी नहीं करता है, सोचता भी नहीं। आप जियारत की किताब उठाते हैं, जियारत करबला जा रहे हैं या ईरान जा रहे हैं, जियारत की किताब, हर इमाम की जियारत में लिखा कि हरम में दाखिल होने से पहले गुस्ल करो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, सारी चीजें हैं। इमाम हुसैन के हरम के लिए हो सकता है कि कुछ स्पेशल अहकाम हो, लेकिन क्या किताब में ये देखने से आप किसी भी इमाम के हरम में जाते वक्त सुन्नत की नियत से गुस्ल कर सकते हैं? जी नहीं। इसलिए कि आप तकलीद आगाए सिस्तानी की कर रहे हैं, आप तकलीद आगाए खुई की बाकी हैं, आप शेख अब्बास कुम्मी की तकलीद में नहीं है, आप जियारत की किताब लिखने वाले की तकलीद में नहीं है। और ये मराजे कहते हैं कि मुस्तहब चीज के लिए भी ऑथेंटिक दलील होना चाहिए। अब ये मजमा जो आज मेरे सामने, इसे तो ये चीज मालूम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी में आगे बढ़ रहा हूं। ये मराजे कहते हैं कि अगर ये गुसल करना हो तो रिजाए मतलूबियत होप ऑफ एक्सेप्टेंस की नियत से करोगे, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा फैलाने की आज जरूरत नहीं। मुख्तसर बात कि वाजिबात व हराम, मुस्तहबात व मकरूहात, इसके लिए ऑथेंटिक दलील होना चाहिए। फिर भी हमारे मराजे में इख्तलाफ है कि इख्तलाफ नहीं? मुझे पता है कि मेरे सामने जो मजमा वो मुज्तहिदीन के फतवों में इख्तलाफ की वजह से ना मराजे को गाली देगा, ना उनकी तौहीन करेगा, ना तकलीद करना छोड़ देगा। वो ठीक है, उसको पता है कि ये मुज्तहिदीन के फतवे अलग अलग, बाज़ औक़ात समझ में भी नहीं आता है कि वाय, बाज़ औक़ात खुद अपने घर के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो जाता ईद मसलन, लेकिन इस सब के बावजूद ना वो मुज्तहिद को बुरा कहेगा, ना वो तकलीद को छोड़ेगा। और जो ऐसे लोग हैं वो मेरी मजलिस में तो नहीं आएंगे। तो अब ये मजमा मुज्तहिदीन के इख्तलाफ को जानता, जबकि जो मुज्तहिद फतवा दे रहा वो उसके एतबार से इंतहाई ऑथेंटिक हदीस है, जो उसकी रिसर्च के मुताबिक सही। इसका मतलब क्या हुआ कि मुज्तहिद ए जिस हदीस को ऑथेंटिक समझ रहा, मुज्तहिद बी उसको ऑथेंटिक नहीं समझ रहा। अब ये बात ज्यादा डिटेल के साथ उस मजलिस में आएगी जिसमें हम मरजहियत के हवाले से कुछ बातें करेंगे, आज नहीं। आज कहना यह कि जब वाजिबात और हराम तक में मराजे कराम में इख्तलाफ है और आज भी है, इसका मतलब क्या हुआ आज भी? भाई इसका मतलब यह हुआ कि चले 800 साल पहले अगर इख्तलाफ था तो हो सकता है कि हदीस की कुछ किताबें मुज्तहिद के हाथ में ना आई हो, हो सकता है कि रिसर्च इतना तरक्की ना की हो, लेकिन आज जब नॉलेज अपने पीक पर पहुंच गई है, एंड पर तो नहीं पीक पर, तब भी इख्तलाफ है। और ये सारे मराजे एक दूसरे की रिसर्च को जानते भी हैं, फिर भी इख्तलाफ। तो हिस्ट्री जो वाजिबात और हराम के मुकाबले में ऑथेंटिक भी नहीं होती, क्या उसके अंदर उलमा में इख्तलाफ नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं और हैं। लेकिन जिस तरह से आप माजी के किसी बड़े से बड़े मर्जे का नाम सुनने के बाद भी उसकी बात पे अमल नहीं कर सकते, यानी वो टावरिंग पर्सनालिटीज हमारे पास में जो पिलर है शियत के, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनके कंट्रीब्यूशन को थैंक यू कह के अप्रिशिएट करना, वो सब अपनी जगह, अमल नहीं करेंगे आप, अमल करेंगे जो आज का मर्जी। तो आखिर हिस्ट्री में ये क्यों होता कि अगर शेख मुफीद जिसके जिनके ख्वाब में शहजादी आए और ये कहें कि या शेख अल्लिम हुमल फिक हसनैन को लेके आए और कहें कि इनको इल्म दीन सिखा दे, शहजादी जिसके ख्वाब में आए, शेख मुफीद जिनके इंतकाल के बाद जमाने के इमाम ने इनका मरसिया लिखा, अय्याम अज़ा शुरू हो गए, सारी कायनात हुसैन पे मातम कर रही, और शेख मुफीद के मरने पर जमाने के इमाम ने ऐसा मातम किया कि बाकायदा मरसिया कहा जो आज भी काजमैन में शेख मुफीद की कब्र पे लिखा हुआ, वो शेख मुफीद कि जमाने के इमाम ने अपनी गैबत में जबानी नहीं रिटन में उनके नाम खत भेजे, अय्युहल अखुल करीम, ऐ मेरे भाई। लेकिन फतवा अगर शेख मुफीद का हमारे पास आएगा अमल नहीं करेंगे, फतवा तो चलेगा आगे सिस्तानी का, रिसर्च तो कबूल की जाएगी आगे खुई की, और हो सकता है कि इस मजमे में कुछ लोग आगे मोहसिन हकीम की तकलीफ में भी बाकी हो, तो बहरहाल आज के महाराजे। लेकिन यही शेख मुफीद अगर हिस्ट्री की कोई बुक लिख दे, और लिखी है, तो अब उसको इस तरीके से प्रोपेगेट करना कि जी मेंबर से करबला के जितने वाकयात पढ़े जाते हैं ये गलत है। देखिए शेख मुफीद जैसे आलिम ने तो करबला की ये हिस्ट्री लिखी है। जब वाजिबात और हराम में हम शेख मुफीद की रिसर्च, उनका इज्जत, उनका एहतराम, उनकी इज्जत, उनका जो रोल और कंट्रीब्यूशन है शियत की तारीख में, वो सबको अप्रिशिएट करने के बाद अमल नहीं करेंगे। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस अय्याम अज़ा में आपके सामने आना शुरू होंगी, जिसमें एक बार फिर शेख मुफीद की मशहूर किताब इरशाद का करबला से रिलेटेड जो हिस्सा, वो दोबारा व्हाट्सएप के जरिए से या दूसरे तरीकों से आप तक पहुंचाया जाएगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब ये लिखा जाएगा कि देखिए हमारे जाकिरीन और इंडिया और पाकिस्तान के जाकिरीन करबला को इस तरह पढ़ते हैं और शेख मुफीद ने इस तरह लिखा, क्या पूरी शिया तारीख में एक शेख मुफीद ही मर्जे गुजरे हैं कि जो उन्होंने लिख दिया उसको हम फाइनल अथॉरिटी समझे? हरगिज नहीं। खैर, अब ये बात मैंने कहा कि बहुत तफसील से बात में आएगी, ये इतनी बात भी इसलिए मेरी जबान पे आ गई कि शेख मुफीद की जियारत जब से कसीर तादाद में मोमिनीन करबला जाने लगे, अब आशूरा अरबईन साल में, जितने टाइम नहीं है, टाइम क्यों मैं आपका वेस्ट करूं, इतनी कसीर तादाद में जा रहे हैं, तो शेख मुफीद की जियारत काजमैन में की जाती, फिर उनका तस्करा होता, फिर उनकी पर्सनैलिटी। लेकिन जो बात भी उन्होंने लिखी है उसको फाइनल नहीं समझा जा सकता। और अजीब बात यह कि वो लोग जो तकलीद को नहीं मानते या बेचारे तकलीद के बारे में उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं, वो ऐसी बात करें तो वो भी गलत है। लेकिन ये मजमा खासतौर पर खोजा शिया इसनाशरी से ताल्लुक रखने वाले वो मोमिनीन जो इस अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, वो जब ऐसी बात करें, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूं बड़े काबिल एहतराम उलमा उनकी किसी किताब को अंग्रेजी में या गुजराती में ट्रांसलेट करके ये साबित किया जाता कि जो कुछ मेंबर से पढ़ा जा रहा है वो गलत। तो उससे पहले एक स्टेप पीछे हटके एक जुमला और कह दो, कि जी शेख मुफीद की या सैयद मुर्तजा की या इब्ने ताऊस की फतवों की यह किताब है तो बस यह है जो आगे सिस्तानी कह रहे हैं सब गलत है, जो आगे खुद कह रहे हैं सब गलत। खैर ये बात मैंने इसलिए कही कि किताब इरशाद आजकल दोबारा अंडर डिस्कशन आने वाली है अय्याम अज़ा के, जो अब 40 तक के दिन है। उनका एहतराम, उनकी इज्जत, इन मराजे के हालात पर मैंने 90 मिनट्स के तकरीबन 25 लेक्चर दिए अलग अलग। शेख मुफीद की तकरीर सुन लीजिए कि कितना मैंने उनका स्टेटस बताया। लेकिन मर्जियत का इंस्टीट्यूशन तरक्की कर रहा, आगे बढ़ रहा। अच्छा, अब ये बात इसलिए भी आ गई कि पहली रात है और ये फितना इस साल के अय्याम अज़ा में हमें इसके चांसेस नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब उसको फिलहाल एक तरफ रोक दीजिए। बात ये हो रही थी कि कर्बला में इमाम हुसैन की आर्मी कितनी थी। अगर किसी रिवायत में 150 आ जाए और मिंबर से या नोहो में 72 मशहूर है तो उससे ये रिजल्ट निकालना कि कर्बला का जो वाकया इंडिया और पाकिस्तान के जाकिर या उलमा मिंबर पे बयान करते सब झूठ है। ये सारे जाकिरीन, ये सारे स्पीकर, ये सारे खतीब झूठ बोलते हैं। फुला किताब में 150 लिखा। तो ऐसी तो बहुत सारी इख्तलाफी बातें, खास तौर पर जो गम की बड़ी रातें आएंगी वहां तो कितने ऐसे वाकयात कि हजरत अली अकबर जैसे शहजादे की शहादत में एक से ज्यादा वर्जन है किताबों में, हजरत अली असगर की शहादत के बारे में एक से ज्यादा रिवायतें। तो उससे यह नतीजा निकालना कि इंडिया पाकिस्तान के सारे उलमा झूठ बोलते हैं और कर्बला में यह सब हुआ ही नहीं था। खैर, अब ये मैंने कहा कि असल में तो जब मर्जियत वाजे होगी कि किस तरह से मराजे इख्तलाफ करते हैं एक दूसरे से तो ये चीज और वाजे होगी। लेकिन जो उसकी बॉटम लाइन बनेगी वो जुमला है जो मैं आज भी कह रहा हूं कि मराजे के इस इख्तलाफ के बावजूद हम किसी मर्जे को ना झूठा कह सकेंगे, नऊज़ु बिल्लाह, ना ये कह सकेंगे कि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है इस इख्तलाफ के अंदर, ना ये कह सकेंगे कि वह हमारी कौम को मिसगाइड कर रहे हैं। वहां ये नहीं कह सकते तो यहां भी इस वजह से ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कर्बला की रिवायतों में भी हर वाकये की तरह वाजिबात की तरह से इख्तलाफ है। खैर, अब ये बात हो रही थी कि ईमान जाय होगा हर शबे जुमा और डेली एहदेना सिरातल मुस्तकीम के बाद हर साल अय्याम अज़ा। कितनी अजीब बात है कि अय्याम अज़ा को इस्लाम ने रखा इसलिए कि सारा साल तुम रहते तो इसी दुनिया में हो ना, शैतान तुम्हारे साथ, दुनिया में तुम्हें हिदायत से हटाने वाली और बहुत सारी फोर्सेस और ताकतें, वीक हो जाता है आदमी, अय्याम अज़ा आता है तुम्हारी बैटरी रिचार्ज होती है, दोबारा नए ईमान के साथ तुम्हें दुनिया के सामने आना चाहिए। और अजीब बात यह है कि आजकल यही अय्याम अज़ा, सारा साल 10 महीने फिर भी हम लोग अपने काम से काम रखते हैं, दीन और ईमान के बारे में इंटरफेयर नहीं करते और अय्याम अज़ा के अंदर एक दूसरे के अकीदे को ज़ाय किया जाता। लेकिन वो तो खैर मासूम ने आखिरी जमाने में शैतान का तरीका बताया कि शैतान आखिरी जमाने में तुम्हें इबादतों के जरिए बहकाएगा, तो अब इसको बढ़ा लीजिए कि अकीदे के जरिए बहकाएगा। लेकिन वो बातें बाद में आएंगी, आज तो पहली मजलिस अय्याम अज़ा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो आप रोजाना 5 नमाजों में कम से कम 10 मरतबा तो पढ़ते हैं, उसका मैसेज अय्याम अज़ा में अपने पीक पर पहुंच जाता कि पूरा साल जो तुम्हें कमजोर किया गया है अय्याम अज़ा तुम्हें ताकतवर करेंगे। मगर ये ताकतवर कब करेंगे, जब पहले तो ये देख लो कि आका हुसैन जब कर्बला के लिए निकल रहे थे तो खाली ये 150 आदमी, ये जुमला था जहां से मेरी मजलिस थोड़ा सा ट्रैक से हटी और वापस मैं आ गया कि 150 72 से लेके 150 से लेके 200, खाली इतने तो मुसलमान नहीं थे, और बाकी जो थे वो क्या कर रहे थे। अब जब यजीद की फौज में उनकी बात भी छोड़े, लेकिन उनकी बात भी क्यों छोड़े। अब एक कैरेक्टर जो मैंने पिछले साल टोरंटो की मजलिस में उसके हालात पढ़े, तो जो लोग इंटरनेट पे सुनते हैं उनको इतने पसंद आए कि फिर शायद मुझे 4-5 जगह पिछले अय्याम अज़ा में फिर उसको पढ़ना पड़ा उस वाकये को। आज तो इतना वक्त नहीं है, और चूंकि लास्ट ईयर मैं कई दफा पढ़ चुका हूं, लेकिन इशारा तो करना। शबस इब्ने रबई मसलन, हुसैन अय्याम अज़ा हर साल जब मुहर्रम का ये चांद नजर आता, करबला में जब वो अलम आज नस्ब किया जाता है, बल्कि नस्ब कर दिया गया, तो क्या एक मैसेज मिलता है, वो ये मैसेज भी कि मसलन शबस इब्ने रबी, हमारे यहां पाकिस्तान में जब रिलीजियस क्विज कंपटीशन होते हैं, हु वांट्स टू बी मिलियनर टाइप के रिलीजियस, कितनी नमाजें इस्लाम में है, चार कौन से मशहूर फरिश्ते हैं, तो एक सवाल ये भी होता, लेकिन ये सवाल बिल्कुल लास्ट स्टेज में होता, यानी ये मोस्ट या वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टफ सवाल है, वो ये कि ऐसा कौन आदमी था जो इमाम अली के जमाने में इमाम अली की आर्मी में था और करबला में यजीद की आर्मी में था, लेकिन नहीं, ये भी जो असल मैसेज है वो क्लियर नहीं हुआ। वो कौन आदमी था जो इमाम अली के जमाने में इमाम अली का इतना फेथफुल और लॉयर और वफादार था कि इमाम अली ने उसे अपने लश्कर का आलम दिया था। मैदान जंग में आलम हर एक को नहीं दिया जाता। आते हैं लोग कि हम आपकी आर्मी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन आलम जो फ्लैग दिया जाएगा इमाम अली के लश्कर का, वो इमाम अली के जमाने में अहले बैत का ऐसा लवर था या इतना फेथफुल था कि इमाम अली ने अपने लश्कर का आलम उसको दिया। और यही सेम पर्सनालिटी आशूर के दिन उमर साद ने अपनी फौज का आलम उसको दिया, वो इमाम अली का आलम भी उसने लिया और यजीद का आलम भी जो थ्रू इब्ने उमर साद उसको मिला। यहां तक तो चले ठीक है, समझ में आ जाता कि इमाम अली के जमाने में उनकी आर्मी में था, 20 साल गुजर गए उधर चला गया। आलमदार, आलमदार ये लफ्ज यानी इसका स्टेटस आप तो जानते हैं कि आलमदार कितना बड़ा होता। इमाम अली की वो जंग, जंगे नहरवान जो खारजियों से हुई, आज की बहुत सारी सो कॉल्ड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस वो खारजियों ही का एक एक्सटेंशन है, लेकिन उधर मैं नहीं जा रहा, बात बहुत बात से बात निकल के बहुत लंबी बात हो रही। वो इस्लाम में वाहिद फिरका, कहा जाता है कि पैगंबर ने कहा कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, पता नहीं हदीस सही है क्या गलत है उसको छोड़ दीजिए, मगर ओनली फिरका है जो इमाम अली को काफिर भी समझता है और वाजिबुल कत्ल भी समझता। दो अलग अलग टर्म्स हैं, बहुत से लोग काफिर है लेकिन वाजिबुल कत्ल नहीं, वो वाजिबुल कत्ल के इनका कत्ल करना वाजिब है, एक ही फिरका, गर्चे हमारे हिसाब से वो मुसलमान रहे भी नहीं, लेकिन आम मुसलमान तो उसको काउंटिंग में लेते हैं 73, एक फिरका। उसके खिलाफ इमाम अली की जो जंग थी उसमें सबसे ज्यादा जो इमाम अली से मोहब्बत जाहिर कर रहा था शबस इब्ने रबी, यहां तक कि इमाम अली ने उसको अपनी फौज का आलम दिया। अच्छा, फौज में पांच आलम होते हैं, एक तो होता मेन आलम जो सेंटर में होता, उसके बाद फिर राइट लेफ्ट सामने की जानिब और अकब, खैर तो पांच में से एक आलम उसको दिया। जरा देखिए उसकी मैचिंग किसके साथ हो रही है, कि एक आलम इसको मिला तो अबू अय्यूब अंसारी को भी एक आलम मिला, साद इब्ने उबादा के बेटे को भी मिला, यानी ये कितने बड़े बड़े इमाम अली के वफादार साथी, उनके साथ इसका नाम। और जब आशूरे का दिन आया और लश्कर उमर सैद तैयार होने लगा, उमर सैद यानी यजीद की आर्मी। तो पांच अलम में से एक अलम इस शबस इब्ने रबी को दिया गया। और जब इमाम हुसैन ने इसको याद दिलाया कि नहरवान की जंग में, नहरवान, अब आजकल जब तिफलान मुस्लिम की जियारत को आप जाते हैं तो खास तौर पे, चूंकि जियारत पे लोग बहुत जा रहे हैं तो मुझे एक एडवांटेज ये है कि जो वाकयात वहां पे उलमा आपको बताते हैं, खाली उसका एक जुमले में रेफरेंस देके मैं अपनी बात को प्रूव करके आगे बढ़ सकता हूं। जब तिफलान मुस्लिम की जियारत आप मुसैब पे करते हैं तो वहां से कितना, शायद 3 मील दूर, इमाम हसन के उस बेटे कासिम की कब्र और रोजा जो जंग नहरवान में शहीद हुए और जिनसे इतनी मोहब्बत थी इमाम हसन को कि जब वो अपने दादा के जमाने में उनके आलम के नीचे शहीद हुए तो बाद में इमाम हसन के यहां जो एक बेटा पैदा हुआ इसका नाम भी कासिम रखा। असली कासिम नाम इमाम हसन के उस बेटे का जो खारजियों से लड़ते हुए जंग नहरवान में मौला अली की मौजूदगी में शहीद हुआ है। तो ये खारजी, खारजी शबस इब्ने रबी इतना इनके अगेंस्ट था कि जब इमाम अली ने जंग शुरू करने से पहले कहा कि हम अहले बैत का तरीका नहीं है जंग करना, पहले जाओ जाके इनको कन्विंस करो और इनसे कहो कि आओ आकर बैठ कर हम डिबेट करें कि तुम जो मेरे खिलाफ मैदान में आ रहे हो तो वाई। ये खाली करबला में इमाम हुसैन ने नहीं किया, ये अहले बैत का तरीका। तो इमाम अली का ऑर्डर आ गया कि जाओ पहले डिबेट करो, उनकी दलीलों का जवाब दो। वाहिद आदमी शबस इब्ने रबी था, कहा मौला आपके दुश्मन के साथ और हम डिबेट करें, हम तो एक सेकंड के लिए उनको जिंदा नहीं रहने देंगे। आज भी आपको बहुत सारे साहिबान ईमान ऐसे इमोशनल नजर आएंगे जो मराजे कराम से भी ज्यादा दीन के वफादार बनने की कोशिश करते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है, इग्नोरेंस की वजह से कि जी वो फला मर्जे ने कैसे कह दिया कि सारे मुसलमानों की यूनिटी हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते शहजादी फातिमा के दुश्मन को मसलन। तो खैर इमाम अली ने कहा जाओ डिबेट करो, कन्विंस करो इनको, हर पूरी कोशिश करो जंग ना हो। ये वाहिद आदमी है इमाम अली की मोहब्बत में डूबा हुआ, कहा मौला आपके दुश्मन को तो हम एक मिनट के लिए जिंदा नहीं देख सकते, उससे जाके हम डिबेट करें या आर्गुमेंट करें या बहस करें या उसे कायल करें। इतना जोशीला और आशूरे के दिन तब आका हुसैन ने एक बार उससे कहा कि आई शबस और तो बहुत सारे यहां मैदान करबला में हमारे दुश्मन है, तुम कैसे आ गए? कल तक तो तुम मेरे बाबा के लश्कर में शामिल, उनके आलमदार, उनसे इतनी मोहब्बत करने वाले कि उनके दुश्मन से आर्गुमेंट करने या बहस करने को भी तैयार नहीं। कहा वो तुम्हारा बाबा मैजिशियन था, उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया या मुझ पर मैजिक कर दिया इसलिए मैं बहक गया था। बहुत सारी बातें वो छोड़ दीजिए, ये शबस इब्ने रबी जो अजीब लश्करों का आलमदार, कायनात का हक का सबसे बड़ा लश्कर अली के पास उसका भी आलमदार, और बातिल का सबसे बड़ा लश्कर उमर सात के पास उसका भी आलम, और ऐसा आलमदार, आलम भी था इसके पास लेकिन ऐसा आलमदार। ये हदीस जो अब मैं पढ़ रहा हूं आजकल जियारत में आप उलमा से सुनते होंगे, मुझे तो नहीं मालूम इसलिए कि मैं जिस ग्रुप में जाता हूं तो आमतौर पर मुझी से कहा जाता है कि आप ही ये सब बयान करें, तो बाकी ग्रुप्स का मुझे नहीं पता। लेकिन कूफा, शहर कूफा बहुत अहम शहर, यानी कूफे को बाज ऐसी खसूसियात हासिल है जो नजफ को भी नहीं, जिसमें से बहुत ही शॉर्ट, नजफ के अंदर अगर आप मुसाफिर हैं तो नमाज पूरी नहीं पढ़ सकते, कूफे में पूरी पढ़ सकते, खासतौर पर आकर सिस्तानी के फतवे में कि पूरा कूफा शहर। तो इमाम अली ने जब कूफे को अपना कैपिटल बनाया तो ये देखा कि लोग मस्जिद कूफा की अहमियत की वजह से इसमें नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो ठीक है, आना चाहिए। बल्कि छठे इमाम के जमाने में जब उस रावी ने कहा कि मैं तो नहीं जाता तो इमाम ने उसको कंडेम किया। बात से बात निकल रही है लेकिन جو کہ آپ یہ زیارت میں حدیثیں سنتے ہیں علماء سے. تو امام علی نے ایک بار جب یہ دیکھا مسجد کوفہ میں بہت لوگ آ رہے ہیں, بلکہ بعض لوگ مسجد کوفہ میں آنے کی وجہ سے کچھ غلطیاں بھی کر رہے ہیں. مثلا یہ میں اپنی طرف سے اگزامپل دے رہا ہوں, فجر کا اول وقت آ گیا, اب جہاں وہ رہتے ہیں وہاں نماز پڑھ لیں, نہیں مسجد کوفہ میں جانا ہے تو اتنا ڈیلے ہو جاتا گھر سے نکل کے وہاں پہنچنے میں کہ وقت فضیلت نکل جاتا. یہ خود اپنی جگہ پہ ایک بہت انٹرسٹنگ مسئلہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے, وہ یہ کہ نماز جماعت کی اتنی اہمیت, لیکن اگر نماز جماعت کسی وجہ سے اتنا ڈیلے پڑی جائے کہ وقت فضیلت نکل جائے تب بھی جماعت کا ثواب زیادہ ہے کہ نہیں, پھر تو فرادہ پڑھ لو اس کا ثواب زیادہ. یا یہ مسئلہ آج کل حج میں لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ حج میں بھی یہی کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا, مگر آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اتنا کراؤڈ ہوتا کہ مغرب سے دو گھنٹے پہلے ہی مسجد الحرام لاک کر دی جاتی ہے, کسی کو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں, اور عشاء کے بھی تقریباً 20 منٹ کے بعد مسجد کھلے گی, تو مغرب کا وقت فضیلت تو چلا گیا. اب مغرب کا وقت فضیلت بچانا اہم ہے کہ نہیں, کعبے کی نماز 1 is equal to 100,000 یا 1,000,000 جو بھی ہو. اب یہ ایک سوال آتا ہے جس کا مجتہدین جواب دیتے ہیں, کچھ مراجع میں اختلاف بھی ہے اس لیے میں اس کو ممبر سے بیان بھی نہیں کر رہا ہوں, لیکن مولا نے دیکھا کہ کوفے کی مسجد میں آنے کی وجہ سے نیک نیتی سے آ رہے ہیں, سنسیئرٹی سے آ رہے ہیں, لیکن کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں. تو امام علی نے ایک بار کہا کہ کوفے کی ہر مسجد اہم, ٹھیک ہے مسجد کوفہ کا اسٹیٹس بہت زیادہ, لیکن ہر مسجد اپنے محلے کی مسجد جو ہے اس کی بھی اہمیت, وہاں بھی نماز پڑھنے کا اتنا ہی ثواب. لیکن فرمایا لال مسجد میں نماز نہیں پڑھنا. اب کوفے میں لال مسجد تو کوئی تھی ہی نہیں اس زمانے میں. امام علی کہہ رہے ہیں کہ کوفے کی ہر مسجد, تمہارے اپنے محلے میں ہو, مارکیٹ میں ہو, جہاں بھی ہو, کوفے کی اہمیت, مسجد کوفہ کی ہے اہمیت لیکن اصل میں پورے شہر کوفہ کی اہمیت, تو ہر مسجد میں نماز پڑھو ثواب ملے گا سوائے لال مسجد کے. اب لال مسجد تو کوئی نظر نہیں آ رہی, یہ کون سی لال مسجد, یہ امام نے نہیں بتایا. جب کربلا کا واقعہ ختم ہوا, ایام عزا کی پہلی رات ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جب کربلا کا واقعہ ختم ہوا تو شبس ابن ربیع نے اپنے ذاتی مال سے ایک مسجد کوفے میں بنائی, اور جس علاقے میں بنائی اس کا نام تھا الحمراء یعنی لال, تو لال مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ تو اتنا بوڑھا آدمی کب سے مسلمان ہے, آج تک کوئی مسجد نہیں بنائی, آج کیوں بنائی؟ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ جب نیکی کی توفیق دے, یا پہلے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, یہ نہیں کہا. اس نے کہا میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے موقع دے کہ میں حسین کے قتل میں شریک ہو جاؤں تو اس کے لیے منت میری یہ ہے کہ میں ایک مسجد بناؤں گا اس شکرانے میں, اور یہ مسجد میں نے اس شکرانے میں بنائی کہ اللہ نے مجھے قتل حسین کی توفیق دی. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اتنا بھئی خود یزید یا اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیجئے, کتنے لوگوں نے, یزیدیوں نے, کتنے یزیدیوں نے مسجد بنائی شکرانے کی, اس نے بنائی. کون؟ جو امام علی کے لشکر کا علمدار, اپنے ذاتی مال سے پوری مسجد بنانا. آج کل تو لوگ اپنے باپ کی قبر بھی مال امام خمس سے بنوانا چاہتے ہیں, کہیں سے کوئی اجازت مل جائے تو باپ کی قبر بھی اسی سے بنے گی, اور وہ مسجد بنا رہا ہے اپنے ذاتی مال سے. مگر ایام اعظم شبس ابن ربیع is not the only example. ہاں یہ بہت بڑی ایگزامپل اس لیے بنی کہ امام علی کے زمانے میں یہ کیا تھا اور پھر کیا ہو گئے, ورنہ تو ابن زیاد کا باپ زیاد بھی مولا علی کے زمانے کا گورنر ہے اور بعد میں وہ اور اس کی فیملی. تو ہر سال ایام عزا ڈیلی بیسس پہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کیجئے, ویکلی بیسس پہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرے, اور ایئرلی بیسس کے اوپر. آج یہ تینوں باتیں جمع ہو گئی, مغرب عشاء بھی آپ نے پڑھی ہے اہدنا الصراط المستقیم, شب جمعہ کے اعمال بھی آپ نے کیا ہے دعائے عدیلہ اور امام زمانہ کی دعا, और मुहर्रम की पहली रात भी आ गई। इसीलिए जो कंप्लीट दुआ हमको बताई गई वो ये नहीं है कि आजम अल्लाह उजूरना बे मुसाबिन अल हुसैन, ये यकीनन ये दुआ हमको बताई गई है, लेकिन इसके साथ वजअलना व इय्याकुम मिन अत्तालिबीन बे सारे ही, अल्लाह हमें हुसैन में हमारे अजर को बढ़ाए, यह अय्याम अज़ाब के अजर को बढ़ाने का महीना भी, लेकिन हमें और तुम्हें करार दे हुसैन के खून का बदला लेने वालों में। ऐसा ना हो कि आज हुसैन का आलम हाथ में उठाए हुए हैं और जब हुसैन का वारिस आ जाए तो सुफियानी का या दज्जाल का आलम हाथ में उठा के बाहर निकले। तारीख बताती है कि ऐसा हो चुका है। चुनाचे हर अय्याम अज़ाब ने ईमान को एक मरतबा दोबारा एनालाइज कीजिए, प्रोटेक्शन का इंतजाम कीजिए, और जैसा कि रिवायतों में एक लफ्ज और भी आया कि देखो शैतान जैसी गलती ना। अच्छा ये जितनी चीजें हैं ना ये सब बहरहाल आखिर में जाके शैतान तक पहुंचती, शैतान जैसा ना बनना। अच्छा शैतान जैसा तो हमको नहीं बनना है, तो शैतान की तो बहुत सारी खसूसियात हैं। किस चीज के लिए इमाम ने कहा? इस चीज के लिए कि दूसरों के ईमान को देखते हुए अपने ईमान को भूल न जाना। शैतान की एक सबसे पहली भूल क्या है? पहली, उसके बाद तो बहुत सारे दिलचस्प शैतान के वाकयात हैं, वो भी इंशाल्लाह इरादा तो है कि इस अशरे में कुछ चीजें बयान की जाएंगी। लेकिन मेरी एक बहुत पुरानी स्पीच, तकरीबन 40 साल पहले की शैतान का इंटरव्यू, उसमें से कुछ बातें आज 40 साल के बाद दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट बन गई हैं, तो इंशाल्लाह उसका कुछ तस्किरा होगा। लेकिन शैतान की सबसे पहली भूल क्या? पहली भूल यह है कि इतना स्ट्रांग उसका ईमान था। एक सवाल जो लोग करते हैं कि मौलाना आज के जमाने में मीडिया, और फिर अगर कोई वेस्ट में रहता है तो वेस्ट ईमान बचाना मुश्किल हो रहा, अपना ईमान बचा भी ले तो अपनी औलाद, मगर जरा देखिए शैतान किसे कहते हैं। शैतान उसका नाम है ना कि सारी कौम उसकी गुमराह हो गई, वो अकेला ईमान पर डटा रहा। बहुत मुश्किल होता है अकेले आदमी के लिए ईमान बचाना, हाँ 5, 10, 20 हो, एक छोटा सा ग्रुप बन जाए तो फिर भी एक दूसरे से सहारा मिलता। देखिए ये मॉरल सपोर्ट भी बहुत अहम चीज, चाहे असाबे काफ की तरह का छोटा सा ग्रुप हो, लेकिन बहरहाल एक दूसरे को तसल्ली देने वाले तो है ना। अकेला जब कोई आदमी, शैतान अकेला, पूरी कौम जिन बहक गई, तफसीलात में जाऊंगा तो पता नहीं कितनी लंबी मजलिस हो, ये अपने अकीदे पे डटा। जब अल्लाह का अजाब आया और कौम जिन कुछ खत्म हो गए, कुछ आंखों से छुपा दिए गए, वो जो कुछ भी हो, शैतान को स्टेटस मिला 7th आसमान पे जिब्राइल का पड़ोस उसको दिया गया, बराबर बराबर दो घर। मगर एक आम जिन अपने ईमान के प्रोटेक्शन की वजह से वहां तक पहुंच गए, मगर फिर एक वाकया पेश आया, और वो ये कि एक दिन आसमान पे सारे फरिश्ते बराबर तो नहीं ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 7th आसमान तक, और जो शुरू के आसमान का फरिश्ता उसका स्टेटस छोटा। फिर जैसे जैसे, अब ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं, टाइम भी नहीं, पहले आसमान के फरिश्ते ने देखा कि एक अनाउंसमेंट हो रहा, और वो अनाउंसमेंट ये हो रहा कि मेरा एक बंदा ऐसा जो मेरी सबसे ज्यादा इबादत करेगा और उसी पर मेरा सबसे ज्यादा अजाब आएगा। अब ये 1st आसमान का फरिश्ता जो स्टेटस में सबसे छोटा, उसने ये ऐलान सुना, घबरा गया, ठीक है मैं इबादत में तो सबसे ज्यादा नहीं हूं, लेकिन ये जो अल्लाह ने कहा सबसे ज्यादा अजाब, कहीं ये मैं ही ना हूं, घबरा गए। घबरा के उसने दो काम किए जो उस दिन से लेके आज तक इस्लाम में, पहले तो अल्लाह से दुआ की गए अल्लाह अपने अजाब से बचा ले, फिर ये शुरू से इस्लाम में का अपने से बड़े का वसीला भी इख्तियार करो। बेशक आज दुआए तवस्सुल पे हमारे यूथ और यंग स्पीकर बहुत ज्यादा एतराज कर रहे हैं, कंडम कर रहे हैं दुआए तवस्सुल को, मगर दुआए तवस्सुल इस्लाम के फाउंडेशन स्टोन और बुनियादी अकीदों में से एक। शुरू से कहा कि अपने से बड़े, तो अब अपने से बड़ा तो सेकेंड आसमान का फरिश्ता, उससे कहा भाई यह अनाउंसमेंट मैंने सुना है और मैं डर रहा हूं, तुम मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे। अब वो घबरा गए, कहा कि अनाउंसमेंट कोई मैं कोई नाम तो नहीं है ना, हो सकता है ये मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं, मुझे तो अपनी फिक्र हो गई है। वो गया थर्ड आसमान, इस तरह से टाइम वेस्ट होगा, सातवें आसमान तक बात पहुंच, और आखिर के चार बड़े फरिश्ते मलकुल मौत और मीकाईल और इसराफील और जिब्राइल, आखिर जिब्राइल तक ये सब लोग गए। जिब्राइल ने ऐसा क्राउड तो कभी नहीं देखा था, छोटे से लेके बड़े तक हर फरिश्ता आया, जिब्राइल हमारे लिए दुआ कर दो। जिब्राइल सैयदुल मलाइका, और इतना कुरान ने जिब्राइल का हाई स्टेटस बताया है कि बाज शिया उलमा का भी ये नजरिया कि जिब्राइल का रुतबा मासूमीन के बराबर या उनके जस्ट आफ्टर है। बात लंबी हो जाएगी। जिब्राइल भी घबरा गए, भाई अल्लाह का अनाउंसमेंट, मेरी सबसे ज्यादा इबादत करने वाला, उसी पर मेरा सबसे ज्यादा अजाब आएगा, नाम तो नहीं हो सकते मेरे लिए। अब फरिश्ते चकरा गए, कहा कि जिब्राइल जब तुम परेशान हो तो तुमसे बड़ा कौन है जिसके पास जाए? कहा मेरा पड़ोसी, वो मुझसे भी बड़ा है, इसलिए कि जिब्राइल इबादत करते हैं क्योंकि अल्लाह ने उनको डिफॉल्ट बनाया है मासूम। शैतान ने पूरी जिन की कौम का मुकाबला करके अपना ईमान बचाया, मुझसे बड़ा, चलो उसके पास। वहां गए, उसने सुना, वो फर्स्ट टाइम उसने एक मर्तबा कहा, अच्छा अच्छा हाँ तुमको डरना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, अरे खुदा इनको अपने अजाब से बचा ले। अपना जिक्र नहीं किया, सोचा भी नहीं। जिब्राइल ने सोचा, इसराफील ने सोचा, पहले आसमान के छोटे फरिश्ते ने सोचा, शैतान, हाँ जब ये अनाउंसमेंट आया है तो अल्लाह का अजाब बहुत बड़ा, मैं दुआ करता हूं। इमाम की हदीस है कि अल्लाह ने शैतान की दुआ कबूल कर ली, क्योंकि उस वक्त तक तो शैतान बिल्कुल ठीक था, दुआ कबूल कर ली। इनमें से किसी भी अजाब नहीं आया और अपना ऐलान भी पूरा किया, और वो इस तरह से कि सारा अजाब उसी शैतान पे आ गया जो अपने आप को भूल गया और दूसरों के बारे में दुआ कर रहा। करो दूसरों के लिए दुआ, लेकिन अपने आप को ना भूलो। अय्याम अज़ाते हमने कहा, अफसोस शबस इब्न रबी कितना बुरा था, अली का शिया होकर यजीदी बना, कंडेम कर रहे हो, करो। ज़ियारत आशूरा में भी लानत है, ज़ियारत वारिसा में भी लानत है, लानल्लाह उम्मतन क़तलत का में है, लानल्लाह उम्मतन, लेकिन अपने आप को ना भूलो। शैतान जैसी गलती ना हो कि ऐसा ना हो कि आइंदा किसी भी स्टेज पर हम भी अहले बैत के इतने ही खिलाफ हो जाए, क्योंकि दुआए तवस्सुल को आजकल जिस तरह से कंडेम किया जा रहा तो उसमें तो बाज़ औक़ात इतने तो ही नामेज जुमले आ जाते हैं कि इन 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 इमामों का वसीला इख्तियार कर रहे हो, यह है क्या? कब्र में मिलके मिट्टी हो चुके हैं, पता नहीं इनकी हड्डियां भी कब्र में है कि नहीं, ये मैंने खुद सुना। वो अपने एतबार से नॉलेज देना चाह रहा है यूथ को, लेकिन उसका स्टाइल अब ये अब पता नहीं चलता कब ट्रैक चेंज हो जाए। करबला डेली वीकली, अब छोड़ दीजिए आज पहली तारीख, और एयरली अपने ईमान की हिफाजत करना, कोई ऐसी गलती नहीं करना है जो शैतान ने की, जो शबस इब्ने रबी ने की, जो जियाद इब्ने अबी ने की, या जो उन लोगों ने की जो हक के कैम से बातिल में गए। और हमको याद है वो बातिल के कैम से हक में आया, उनको भी याद करें जो हक के कहन से बातें में गए। वो गलतियां क्या है, ये इंशाल्लाह कल से शुरू होगा, थोड़ा सा जिक्र इसका होगा। इस अय्याम अज़ा के इस अशरे में हमारे मौजूआत तीन चार मुख्तलिफ मौजूआत होंगे, लेकिन होंगे सब एक सीक्वेंस, और इसी स्टेज के ऊपर देखो ये गलती ना होने पाए। जब हुसैन मदीने से निकले तो कम अज कम उस वक्त जो अपनी फौज को लेके गए तो एक एक सिपाही को चेक किया, इनमें कोई ऐसा ना आने पाए जैसा मेरे बाबा के लश्कर में आ चुका है, जैसा मेरे नाना के लश्कर में आ चुका है, जैसा मेरे बड़े भाई के लश्कर में आ चुका है। ہر ایک کی آرمی میں، چاہے وہ رسول خدا ہو یا امام علی ہو یا آقا حسن مجتبی ہو، ہر ایک کی آرمی میں ایسے لوگ آ چکے جو محبت کرتے ہوئے آئے تھے اور بعد میں دشمن بن گئے. میری فوج پہلے دن سے ہی مدینہ سے نکلتے وقت ہی سلیکٹڈ، ہر آدمی کو آنے کی اجازت نہیں. وہی جن پر حسین کو پورا پورا ٹرسٹ، صرف ان کو لے کے میرا آقا حسین چل رہا. لیکن اس میں ایک پرسنالٹی ایسی جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب میرے بابا کے لشکر کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ بابا کو پورا ٹرسٹ ہو وہی جائیں گے، تو پھر آخر مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ یا میرے دین میں یا ایمان میں یا عمل میں کہیں کوئی کمی ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آتا. اور اس کا نام تھا فاطمہ صغرہ. اگرچہ آج کل شہزادی فاطمہ صغرہ کے مصائب کے حوالے سے بھی ایک اینٹی لابی ہمارے یہاں بن گئی ہے، لیکن اس پر میں تھوڑی سی بات ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں بعد میں کروں گا، آج تو مصائب کی منزل ہے. فاطمہ صغرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا میرا بابا مجھے کیوں نہیں لے جا رہا. ان کو نہ لے جائے جن کے عقیدے میں یا کوئی کمی ہے یا آگے چانسز ہیں، تو ٹھیک ہے، میں تو نہیں آتی اس کیٹیگری میں. تو اور کیا چیزیں، شاید میرا ایج گروپ، بڑے خطرناک جہاد کے لیے میرا بابا جا رہا، چھوٹے چھوٹے بچے اس میں نہیں ہونے چاہیے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ حسین کی اس آرمی میں سکینہ جیسی 4 سال کی بچی بھی ہے اور علی اصغر جیسا 2 ویک کا بچہ بھی ہے، بلکہ خالی ان کو شامل نہیں کیا، ان کی اہمیت بتائی. 28 رجب کو جب آقا مدینے سے نکلنے والے تو عبداللہ ابن عباس، جن کا اسٹیٹس خود بہت ہائی، آ کے پہلے تو آقا کو کنوینس کرنا چاہا، آخر میں کہا کہ آپ امام وقت ہیں، جو فیصلہ کریں مجھے قبول، لیکن آپ کوفے جا رہے ہیں اور یہ بڑی خطرناک جگہ. میں نے تو آپ کے بابا کا زمانہ دیکھا، کم از کم عورتوں اور بچوں کو لے کے تو نہ جائیں. اور حسین کا جواب تھا، اے ابن عباس، جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں وہ میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے ساتھ یہ عورتیں اور بچے نہ ہوں. میرے اکبر سے، میرے قاسم سے، یہ میرا انٹرپریٹیشن ہے، میرے عباس سے زیادہ اہمیت ان عورتوں اور بچوں کی ہے، یہی میرے جہاد کو کامیاب کریں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ آقا حسین کا رپلائی بعد میں آیا، جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا ان کو لے کے نہ جائے، پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی، اے ابن عباس یہ کیا غضب کر رہا ہے، کیا بھائی سے جدا ہو کے بہن زندہ رہ سکے گی؟ لیکن ایج گروپ تو ریزن نہیں ہے، حسین تو اتنی اہمیت بتا رہے، شاید اس لیے صغرا کو لے کے نہیں جا رہے کہ صغرا بیمار ہیں. مگر بیمار تو آقا سجاد بھی، ایک بیمار جا سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں جا سکتا؟ شاید اس لیے لے کے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ لڑکی ہے، مگر جب باقی لڑکیاں فاطمہ کبریٰ اور سکینہ جا سکتی ہیں تو یہ لڑکی کیوں نہیں جا سکتی؟ کوئی ایسا ریزن سمجھ میں نہیں آتا. نہضت الحسین میں ایک روایت لکھی اور وہ یہ ہے کہ جب 28 رجب کی سواریاں تیار ہو گئی تو حسین نے ایک مرتبہ کہا، بیویوں جاؤ اور جا کے صغرا کو الوداع کہہ کے آ جاؤ، اس لیے کہ اسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن دیکھو کوئی صغرا سے باتیں نہ کرے، جانا بخدا آپ اس کہہ کے آ جانا. حسین کو بھی یہ ڈر کہ کہیں صغرا کسی بیوی کی سفارش لے کے نہ آ جائے. اب صغرا نے بھی دل میں یہی سوچا کہ جو بیوی آئیں گی ان سے کہوں گی میری سفارش کر دیجیے، لیکن ہر بیوی اتنے جلدی آتی ہے اور اتنا خاموش، سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی خدا حافظ، واپس چلی گئی. صغرا کو وقت ہی نہیں مل رہا ہے. لیکن آخر میں جب دیکھا میری مہربان پھپھی ثانیہ زہرا، زینب کبریٰ میرے حجرے میں آئیں اور سر پہ ہاتھ رکھا، صغرا بیٹی خدا حافظ. اب صغرا تڑپ گئی، اگر یہ چلی گئی تو اور کوئی نہیں ہے میری سفارش کرنے والا. تڑپ کے پھپھی کے دامن کو تھاما، پھپھی اما، آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، आज सिर्फ एक सवाल है, बाबा से सिफारिश कर दें मुझे साथ ले जाएं। जैनब का लकब है शरीकतुल हुसैन, हुसैन की शरीक। तो अब इस जिहाद में जैनब शरीक है। हुसैन की तरफ से सुगरा को समझाया, सुगरा बेटी घबराओ नहीं, चंद दिनों की बात है, हम लोग वापिस आएंगे। लेकिन सुगरा तड़प के एक अजीब जुमला कहती है, फूफी अम्मा मुझे पता है आप आएंगी, मेरा बाबा नहीं आएगा। कोई बेटी अपने बाप के लिए ऐसी बात कहे और सफर के मौके पर। जैनब ने तड़प के कहा, सुगरा ये क्या कह दिया? कहा, फूफी अम्मा कल रात को मेरा दिल घबरा रहा था, मेरी आंख खुल गई, मैं एक बार कमरे से निकल के सहन में गई, देखा सहन की दीवार के साथ कोई सिया पोश बीबी जमीन पे बैठी है और बार बार मातम कर रही, हाय मेरा लाल, हाय मेरा हुसैन। फूफी अम्मा मैंने पहचान लिया, ये मेरी दादी फातिमा जहरा है जो मेरे बाबा का मातम कर रही है। माँ का नाम सुना अब तो जैनब बर्दाश्त न कर सकी, सुगरा के बाजू को थामा, हुसैन के हुजरे में गई। लेकिन इससे पहले कि सुगरा या जैनब कुछ कहें, हुसैन ने देखा समझ गए। दो ही मर्तबा करबला में ये जुमला आया, दो ही मर्तबा आया कि बड़ा बच्चे को लेके आया और उसके कहने से पहले हुसैन समझ गए। आज 28 रजब को मदीने में और कल आशूर की सहपहर को जब अब्बास सकीना को लेके हुसैन के पास गए थे। जैनब को सुगरा लाते देखा, हुसैन ने कहा, जैनब मैं समझ गया सुगरा को क्यों ला रही, भाई तेरी हर बात मानेगा, सुगरा की सिफारिश ना करना। अब जैनब ने घबरा के कहा, भैया आखिर मेरी सुगरा की गलती क्या कि सबको ले जा रहा है, सुगरा को नहीं ले जा रहा। हुसैन ने कहा, जैनब तुम्हें तो पता है मेरे बात क्या होने वाला है, ये काफिले की क्यादत जैनब को संभालना भी है और इसके लिए मौला अली ने जैनब को पहले से तैयार भी किया था। बाज़ उलमा पढ़ते हैं रोजाना फजर की नमाज के बाद अली जैनब को लेके मकान के सहन में इतना टहलते थे कि जैनब के घुटने दुखने लगते थे। कहा, बाबा ये आप मुझे इतना क्यों चला रहे हैं? अली ने कहा था, जैनब आज मश कर ले, कल करबला की शाम गरीबा जब अब्बास नहीं होगा, अकबर नहीं होगा, तुझी को काफिला संभालना। हुसैन ने कहा, जैनब तुझे पता है कि मेरे बाद क्या होने वाला, कूफे और शाम के बाजारों में जाना, दरबारों में जाना, नामहरमों में जाना, बलवायाम में जाना। हुसैन अपनी हर बेटी की बेपर्दगी बर्दाश्त कर ले, सुगरा की बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं है। तो मौला क्यों? कहा, इसलिए कि मेरी बाकी बेटियां या मेरे नाना की शबी है या मेरे बाबा की तस्वीर है, लेकिन सुगरा मेरी माँ फातिमा जहरा की शबी है। हाय हुसैन, शबी है जहरा, नाम हरमों में किस तरह से देख। अजरकुम अल्लाह अला वलानतुल्लाह अला आदाएहिम अजमईन। परवरदिगारा अहले बैत अतहार के इन मसाइब पे गिरिया करने वालों, हुसैन और हुसैन की औलाद के इन मसाइब पर आंसू बहाने वालों के इस गिरिए और आंसुओं का वास्ता, जो लोग आज की मजलिस में हैं उनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। खुदावंदा गम हुसैन के सिवा हमें दुनिया और आखिरत में कोई गम ना मिले, मगर गम हुसैन तो वो दौलत है जिसे लेके हम जन्नत में भी दाखिल हो। खुदावंदा हमारे तमाम मरहूमीन की मगफरत फरमा, बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा, जिन्हें रोजगार की कोई परेशानी है उनकी ये परेशानी दूर फरमा, जिन्हें वीजे की कोई परेशानी है उनकी वो परेशानी दूर फरमा। खुदावंदा तुझे हुसैन की सुगरा, लैला के अकबर, रबाब के असगर का वास्ता, हमें अपनी औलाद को दीन के रास्ते पे सही तरबियत कराने की तौफीक अता फरमा। दुनिया में जहां जहां मजलूम मुसलमान और मजलूम शियान हैदर कर्रार मजालिम का निशाना बन रहे, बहरैन हो कि सऊदी अरब हो कि यमन हो कि सीरिया हो कि इराक हो कि ईरान हो कि पाकिस्तान हो कि अफगानिस्तान हो, जहां जहां मजलूम मुसलमान, खास तौर पे जो आजकल बर्मा के हालात, खुदावंदा इन सब मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा और दुनिया से जुल्म के खात्मे के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा।